ओम शांति। अभी आज भट्टी के अंतिम दिन हम सबको लाभान्वित करने और अपने अनुभवों की बातों से ज्ञान योग और अलौकिक मार्ग प्रदर्शना करने परम आदरणीय रामनाथ भाई हमारे बीच उपस्थित हैं। रामनाथ भाई, हम आपका इस संगठन में दिल से स्वागत करते हैं। आपको 1972 में बाबा का परिचय मिला, एक रिफाइनरी कंपनी के प्रबंधक के रूप में आपने लौकिक में सेवाएं दी। 78 से आप संपूर्ण रूप से समर्पित रूप से बाबा के इस यज्ञ में अलौकिक सेवाएं दे रहे हैं। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के धार्मिक विंग के आप मुख्यालय संयोजक है। मृदुभाषी, मिलनसार और संतों महंतों तक पहुंचने की आपकी विशेषता ने बहुआयामी व्यक्तित्व के द्वारा आपके द्वारा अनेक प्रकार की सेवाएं कराई है। आपने देश ही नहीं विदेशों में जाकर भी अनेक प्रकार की आत्माओं को अलौकिक परिवार में और लौकिक परिवार में मार्ग प्रदर्शना भी किया है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी परम आदरणीय रामनाथ भाई हमारे बीच बहुत सुंदर विषय को स्पष्ट करेंगे, भविष्य उज्जवल बनाने मन की उलझनों को समाप्त करो। परम आदरणीय रामनाथ भाई जी,
ये जो इधर उधर बैठे उनको बोलो बीच में आओ, इधर भी साइड में भी। ओम शांति,
ओम शांति,
ओम शांति।
यहाँ जो दूर बैठे भाई तो दृष्टि लेना, एकाग्र होना भी डिफिकल्ट होगा। आपसे निवेदन है आप बीच में आ जाओ, बिल्कुल दूर दूर जो माताएं साइड पे गेट के आगे बैठी है, बीच में बहुत सारी जगह खाली है। आपसे भी हमारा नम्र निवेदन है आप बीच में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। परम आदरणीय रामनाथ भाई जी,
ओम शांति। जो आज का विषय है, भविष्य हमारे हाथ में है, भविष्य को उज्जवल करना चाहते हो, भविष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, दिव्य बनाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए एक उलझन है, तकलीफ है, क्योंकि बहुत सारे बातें हम सुनते हैं। इंग्लिश में कहते हैं उसको टू मैनी कुक स्पॉइल द पॉट। एक बर्तन में बहुत प्रकार का खाना बनाओ तो बर्तन खराब होता है, दूध के लिए अलग है, सब्जी के लिए अलग है। तो ऐसे यहां भी बहुत कुछ सुनते हैं तो क्या करे क्या छोड़े, तो उलझन होता है। जैसे खाने के थाली में बहुत खाना दिया, बहुत वैरायटी है, क्या खा लू क्या छोड़ू। तो इसके लिए यहां इतनी सरल भाषा है, स्पष्ट है, कोई उलझन नहीं है। अगर कोई उलझन है, कंफ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं आया, उसकी भी विधि विधान है। तो सबसे पहले है ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर कोई दुनिया का ज्ञान नहीं है, कोई शास्त्रों का इधर का नहीं है। संगम पर कलप में एक ही दफा स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा जो सत्य है, चैतन्य है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा, सत्यम रामम सुंदरम नहीं कहा, सत्यम शिव सत्य है, तो वो ज्ञान का सागर है। और इस संगम पर उसका कर्तव्य है, क्या है, पतित आत्मा को पावन करना। शरीर की बीमारी शरीर के लिए कुछ नहीं, उसके लिए आज बाबा ने एक बहुत अच्छा पॉइंट सुनाया, देखना मुरली में क्या कहा आज, भक्ति में बलि चढ़ाते हो उससे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? आप पूछेंगे आज मंदिर में जाओ, सोना हीरा सारा मंदिर में चढ़ता है, कितने लोग मंदिर में भीड़ है, यात्राएं करते हैं। हाँ मिलता जरूर है, बच्चे परीक्षा में पास हो गया, बच्चों की शादी हो गया, मुझे मकान मिल गया, मकान बना के दिया बाबा ने, ट्रेन में जाना था बाबा ने टिकट दे दिया बनाकर। ये अल्प काल की प्राप्ति मंदिरों में पूजा पाठ बलि ये सब करने से मिलता है, नहीं ऐसे नहीं, वर्तमान के लिए कुछ ना कुछ मिलता है, अल्प काल की प्राप्ति है। लेकिन शिव बाबा जो आया सारे कल्प के लिए, आत्मा के अंदर जो पाप है काम और क्रोध, ये दुख अशांति दरिद्रता बीमारी सबका कारण, वो सदा के लिए मिटाने के लिए आया है। ये दोनों में अंतर है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भगवान आके क्या करता है, किसी की बीमारी ठीक नहीं करता है, आज बीमारी हुआ दूसरा आ जाएंगे कल, किसी को पैसा नहीं देता है, खाना नहीं देता है, कुछ नहीं, पतित आत्मा को पावन करता है, ये याद रखना अच्छी तरह से। आप पूछेंगे पतित आत्मा कौन, जब रात को सोते हो देखो किस प्रकार के स्वप्न आते हैं, कहीं से नहीं आते हैं, आंखें बंद करके सोए हो, इस शरीर में आने के बाद जो जो कर्म किया वो सारा स्वप्नों में दिखाई देता है। अगर काम और क्रोध चार प्रकार के स्वप्न हैं, काम और क्रोध के स्वप्न आते हैं उसका नाम पतित आत्मा पाप आत्मा। और इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है, आपके पास सोना हीरा महल एसी कमरा डनलप गद्दी सब कुछ है, अगर अंदर पाप है उसका सुख भोग नहीं सकते हो, घर में शांति नहीं, नींद नहीं, आज ये बीमार हो गया, कल एक्सीडेंट हो गया, आज ये हो गया, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर व्यवस्था है कि पुण्य आत्मा ही इस सृष्टि की संपत्ति का सुख का अनुभव कर सकता है। सृष्टि के अंदर जो सुख है, आपके पास धन है, जमीन है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, उसका सुख कौन अनुभव कर सकता है, जिसके अंदर काम और क्रोध के पाप नहीं है, पुण्य आत्मा ही उसका सुख अनुभव कर सकता है। नहीं तो आज कली की दुनिया में देख लो करोड़ों पति है, बच्चे है, डनलॉप गद्दी है, कार है, सब कुछ है, आज ये बीमार, आज ये शुगर बीमारी, आज ये नहीं खा सकता है, वो नहीं कर सकता है, तो सब कुछ होते हुए भी जीवन में शांति और सुख नहीं है। तब बाबा ने कहा मैं आता हूं, बच्चों को सोना हीरा कुछ नहीं देता हूं, किसी के शरीर की बीमारी डॉक्टर ठीक करेगा, मैं सिर्फ पतित आत्मा को पावन करने आया हूं, ये अच्छी तरह से याद रखना। शिव बाबा का इस धरती पर संगम पर एक ही कार्य है, पतित आत्मा को पावन करना, उसकी विधि बताता है तो उसकी दवाई भी देता है, सुप्रीम सर्जन है वो। क्या विधि? एक ही विधि है ब्रह्मा कुमारी के अंदर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। क्या विधि है वो? रोज मुरली में आता है, आत्मा समझ मुझे याद करो तो मेरे शक्ति से विकर्म पाप विनाश होंगे अपने आप नहीं, चाहे लाख करो चतुराई ये लेप मिटे ना रे भाई, कुछ भी कर लो। और देखो रावण किसको याद करता था? शिव को याद करता था ना। रावण किसको याद करता था? क्या हुआ उसका? अभी हम भी शिव को याद करते हैं तो हमारा भी क्या होगा? रावण की जैसी गति होंगी ना। हाँ रावण को शिव बाबा ने विधि नहीं बताई थी, विधि बताई थी रावण को नहीं। तो बच्चों को, आज बच्चों को, बाकी को नहीं, दुनिया के बच्चों को पता नहीं, वो रावण के दुनिया के विधि पर चलते हैं। तो यहां शिव बाबा ने आके विधि बताया, तो उस विधि की क्या विधि है? वो आत्मा समझो, और यहाँ आत्मा समझने की भी विधि है। आत्मा कहते भी माता जी दिखाई दे रही, मैं माता जी हूँ, ये भाई है, ये भाई कहता है मुझे समझो, आपको कैसे समझू मैं? पूछता हूँ भाई जी आपका नाम, आप कहाँ से आए हो, आप क्या करते हो? दोनों भाई है, लेकिन ये भाई का नाम अलग है, ये भाई का गांव अलग है, ये भाई का काम अलग है। तो मैं कौन सी आत्मा हूं? पूछो अपने आप को, क्योंकि हर एक जानता है, किसी को पता नहीं। आपका दिल जानता है, दिल माना बुद्धि, बुद्धि को याद है मैंने इस जीवन में क्या क्या पाप किया है। तो पूछ लो मैं कौन सी आत्मा हूं, देवात्मा हूं, वो बताएगा, वो सत्य बोलेगा, नहीं मैंने बहुत पाप किया है। मैं कौन सी आत्मा, महात्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं, पाप आत्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं? पूछ लो। तब कहा सच्चे दिल पर साहेब राजी है। शिव बाबा को राजी करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, सच्चे दिल से पूछो। दिल माना बुद्धि, दिमाग माना मन, मन बहुत चलाते हो, दिमाग, बुद्धि, दिल, वो सत्य बोलता है, उसके अंदर सब कुछ भरा हुआ है। उससे पूछ लो मैं कौन, वो बताता है तुरंत कि मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। बाबा का बच्चा नहीं, मैं बाबा के बच्चे हो तो रामदेव बाबा का होंगे, बहुत बाबा यह है, कभी बाबा अकेला नहीं। कौन सा बाबा? फकीर के भी बच्चे है, राजा के भी बच्चे है ना, हम किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिवान, साधारण नहीं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे। जवाब आता है फिर मेरा रूप पूछ लो, तुरंत बुद्धि कहेंगे मैं एक सफेद चमकता हुआ सितारा। फिर पूछो मेरे गुण, अभी मैं शांत नहीं हूं, अभी पवित्र नहीं, मैं था सत्युग में, मैं शांत था, पवित्र था, अब मुझे बनना है। फिर मैं कहां से आया? परम धाम से आया। ये आत्मचिंतन पहले रोज चाहिए। जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में नंबर डालो, एक ही मिनट के अंदर आवाज यहां से वहां जाता है, तो यहां बैठकर अगर आत्मा के अंदर ये नंबर डालते हो तो आपका आवाज परम धाम में पहुंचता है। अगर आत्मा के अंदर ये नंबर नहीं डाला, आत्म अभिमानी नहीं बने, तो आपका आवाज परम धाम में कैसे जाएगा? जाएगा? ये याद, ये विधि है। अगर भविष्य को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो, कुछ कमाई करना चाहते हो, श्वास, संकल्प, वाणी, श्रेष्ठ कर्म, ये सारे खजाने हैं। श्वास का खजाना, संकल्प का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना कहां से मिलेगा? सारे कल्प के लिए हमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस चाहिए, कौन देगा? ऊपर से दवाई आएंगी, खाना आएगा? नहीं। संगम पर बीज बोलो, जो संगम पर बीज बोते हो ये कल्प वृक्ष है, सारे कल्प के लिए आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस देगा। अगर संगम पर किसी कारण से बीज नहीं बोया तो इनको गरीब किसने बनाया? किसने बनाया गरीब? क्यों गरीब हुए? दान, संगम पर दान नहीं किया। संगम पर अगर ज्ञान का दान करते हो, एक व्यक्ति को आज की मुरली के पॉइंट सुनाते हो, एक का पदम गुना, ये निराकार है, अविनाशी है, वो एक का एक गुना नहीं देता है, एक का पदम गुना देता है, अविनाशी फल देता है। तब बाबा ने आज कहा, बहुत दफा कहा, बच्चे गृहस्थ में रहो, सब कुछ करते रहो, सिर्फ एक ही काम करो, हर संकल्प में, हर कदम का उसको, हर संकल्प में, हर श्वास का, ये श्वास नहीं, संकल्प रूपी आत्मा का श्वास, हर संकल्प में, हर सेकंड में शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा देख रहा है, उसने मुझे ये कहा था, शिव बाबा आप मुझे देख रहे हो, आपने ये कहा था, आपने ऐसे कहा था, उसको याद करते करते कर्म करते हो, पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो, कुछ नहीं करना है। इसलिए नाम इसका सहज राज्य। देखो एक उदाहरण बताता हूं, माताजी क्या करती थी, ज्ञान में आने से पहले घर के सामने कोई भी आया खाना देती थी ना। आज एक साल हो गया ज्ञान में आई, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हो, मुरली सुनते हो, योग करते हो, और अभी भी घर के सामने वही फकीर वही गरीब आता है, माताजी अभी भी खाना देती है, पहले भी देती थी। तो दोनों में अंतर है, माताजी तो वही है, वो फकीर वो गरीब जो भी पहले आता था वो आज भी आ रहा है, तो दोनों वही है, अंतर क्या है? सिर्फ माताजी पहले ज्ञान नहीं था, अभी एक साल हो गया ज्ञान सुना, और अभी भी उनको रोज कभी भी आता है खाना देती है दान करते, दोनों में अंतर है। हाँ ये अंतर जानना, माताजी भी वही है, वो गरीब भिखारी आता वो भी वही है, अंतर पहले जब वो आता था अरे ये साधु है ये फकीर है, उसके शरीर को देखती थी और खाना देती थी, एक का एक गुना मिलता था, फल मिलता था एक का एक ही गुना, और अभी वही आता है, अभी माताजी को ज्ञान मिला तो उसको देखते अरे ये भी तो शिव बाबा का बच्चा है, उसको देखते शिव बाबा याद आया खाना दे दिया, पद्मों की कमाई जमा हो गई। इतना सिंपल है, कर्म वही है व्यक्ति भी वही है, सिर्फ स्मृति ये कौन, पहले हम शरीर को देखते थे हम दान देते थे, अभी वही व्यक्ति है, बाबा ने ज्ञान सुना है रोज मुरली सुनती है, ये सब शिव बाबा के बच्चे, यहां रावण का बच्चा कोई नहीं है, तो उसको देखते अरे ये भी तो शिव बाबा का बच्चा है, उसको देखते ही विचार आया शिव बाबा याद आया, हाथों से खाना दे दिया, पद्मों की कमाई जमा हो गई। इतना सहज है, आप पूछे बाप भगवान आके आज देखेंगे, आप जानकी दादी थी, क्या थी, बीमार थी पुणे में, कुछ पढ़ी लिखी भी कुछ भी नहीं, आज बाबा ने तो उनको लाके सारे विश्व का मालिक बनाया, विदेश में इंग्लिश भाषा नहीं है तो कैसे बनी। भगवान माताओं के पर ज्ञान का कलश रखता है, तब बाबा ने कल कहा था कि पढ़े जो पढ़े लिखे उनको नहीं पढ़ाता हूं, जो अनपढ़ है पढ़े लिखे नहीं है उनको पढ़ाता हूं, उनके ऊपर ज्ञान का कलश रखता हूं। ये भगवान की कमाल है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है, यहां कोई मनुष्य नहीं शास्त्रों का कहीं का ज्ञान नहीं है, किसी को भी आप पूछ लो आत्मा शरीर में कहां है, आत्मा क्या है, श्वास आया श्वास चला गया, तो भगवान आके ऐसे अविनाशी ज्ञान देता है जो दुनिया में किसी ने कभी भी नहीं सुनाया है, कोई शास्त्रों में कहीं भी नहीं है, सिर्फ एक जगह पर और एक आता है। अभी भी देख लो माताएं मंदिर में जाती है तो क्या मांगते भगवान से, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, मन दे दो नहीं, माना बच्चों के पास बुद्धि नहीं है, भगवान देगा कहां देगा, वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं निराकार दिव्य बुद्धि दाता, मन नहीं, मन है बुद्धि भी है लेकिन उसका ज्ञान नहीं था। कहीं भी शास्त्रों में जाओ, कहीं कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, बुद्धि का ज्ञान नहीं, मन लगाओ मन मना भाव। सिर्फ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कहा दिल से याद करो, बुद्धि मेरे साथ लगाओ, बुद्धि योग का, नहीं तो दुनिया में कहीं भी बुद्धि का ज्ञान नहीं है। एक एक गीता में आता है, एक जगह पर अर्जुन को 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, माना नहीं, और वहां भीष्म पितामह ऐसी तीर छोड़ता है सारे पांडव के सेना को ध्वस्त कर देता है, तो क्या करे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, उनके साथ था, अरे अर्जुन आप मुझे देख नहीं सकते हो, मुझे मेरे पर आपको विश्वास नहीं है, मेरे साथ बैठे हो लेकिन मेरे के अनुसार आप बाण नहीं छोड़ते हो, तो आप मुझे देख नहीं सकते हो। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, दिव्य नेत्र देता हूं, दिव्य बुद्धि देता हूं। वहां गीता में एक जगह आया, नहीं तो बुद्धि का कहीं भी ज्ञान नहीं। अभी आप सोचो अर्जुन के सामने कौन खड़ा था, कौन था? आप भी हम भी कहते भगवान श्री कृष्ण खड़ा है ना। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन आप मुझे देख नहीं सकते हो। तो अर्जुन किसको देख रहा था, कभी सोचा अर्जुन के सामने कौन था? तब कहा विश्व में ऊपर, ऊपर कौन रहता है? निराकार। विश्व रूप दिखा ऊपर का, यहां नहीं, यहां कौन था वो? तब कहा दिव्य बुद्धि। यहां भी शुभ बाबा कहां है? ऊपर है। कौन देखेगा? बुद्धि। रात को कौन देखता है? आंखें बंद करके सोए हो, बुद्धि नेत्र देखता है। ये शरीर को कौन चलाता है? कौन कहता आपको इधर देख लो? बुद्धि के अंदर विचार आता है, हाँ वो आने वाले थे, आए कि नहीं है, बार बार उधर देखते रहो। बुद्धि बताती है, आंखों को घुमाती है। तो बुद्धि के अंदर अगर ज्ञान चाहिए, अगर आज जो मुरली सुनी कोई फायदा नहीं, लिखी कोई फायदा नहीं, अगर एक मुरली के पॉइंट आज मुझे बाबा ने क्या कहा था, यहां से सुनते सुनते मुरली सुनते सुनते आज मुझे ये काम करना है, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, यहां से बाहर जाते ही कोई भी मिला, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, नाश्ता कर रहे हो और कोई मिला उनको भी बता, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, दिन में खाना खाते समय कोई मिला, आज देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया, रात तक सोने तक दिन में 3-4 दफा औरों को और आज के मुरली के पॉइंट सुनाते हो, आपके अंदर खजाना जमा हो गया, अविनाशी खजाना है। अरे बुद्धि के अंदर होता है, तो बुद्धि क्या करेंगे आपको, ये देखना नहीं, ये खाना नहीं, ये सोचना नहीं, तो बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, तो बुद्धि आपको रोकेंगी। शरीर के अंदर, घर के अंदर सफाई कौन करता है? जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, घर साफ स्वच्छ है, तो ये शरीर को घर को भी कौन साफ करेगा? बुद्धि। जिस बुद्धि के अंदर ज्ञान गया उसको कभी भी बीमारी नहीं होंगी, वो शरीर को स्वच्छ रखता है, ये नहीं खाना, ये खाएंगा तो ये होगा, यहां किडनी के अंदर कुछ जमा हुआ है उसको साफ करेगा, क्योंकि बुद्धि के अंदर ज्ञान है। ये शरीर रूपी मकान को स्वच्छ कौन करता है? तब बाबा ने कल कहा था, योग से आप आयु बढ़ा सकते हो। योग से क्या होता है? विकर्म विनाश होता है, पाप खत्म हो गया, तो बुद्धि के अंदर ज्ञान बढ़ गया, वो ज्ञान आपको कहता है ये नहीं खाओ, ये खाएंगे तो ये होगा, शरीर के अंदर कुछ भरा है इसको खाली करेगा अपने आप, रात को सोते समय मशीन काम करता है, वो बुद्धि करती है। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं है तो बीमारियों का कारण कौन? किसने खाना खाया? शरीर ने खाया। कौन गुस्सा करता है? सारी बीमारी दुखों का, अपना भविष्य बिगाड़ने का, अकाले मृत्यु का कारण कौन? अगर ध्यान से गाड़ी चलाता है तो एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट होने का कारण क्या? बीमारी का कारण क्या? सबका कारण बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं है। तब का कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट। तो भगवान आकर के ऐसा ज्ञान देता है, ऐसी बुद्धि का पहला ज्ञान देता है, फिर उसके अंदर क्या रखो? रोज एक मुरली के पॉइंट रखो, एक ही बस। तो बार बार अपने को पढ़ाओ, औरों को भी पढ़ाओ, आपकी बुद्धि भी स्वच्छ हो गई। वर्तमान जो बुद्धि कर्म बोलेंगे औरों को ज्ञान देंगे, दान किया आपने, आज बाबा ने कहा विश्व महाराजन कौन बनेंगे, कैसे बनेंगे, तो ज्ञान दान करो। ज्ञान दान करेंगे सारे कल्प आपको याद रखेंगे, देखो इन्होंने मुझे ये कहा था, खाना सवेरे दिया, शाम को फिर भूख लगेंगी, सदा तो नहीं देंगे आप। तो ये ज्ञान अविनाशी फल देता है। फिर कोई पूछेगा योग कैसे करना है, वो भी सुनाएंगे आप, विकर्म विनाश हो जाएंगे। आज बाबा ने कहा कि कैसे याद करना चाहिए, तो विकर्म विनाश हो, बहुत जन्मों का बोझ है जानते हैं हर एक, कैसे मिटे, तो विधि, अगर आप विधि पूर्वक योग करते हो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते हो, तो उसके शक्ति से, शिव बाबा कौन, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, एक एक शक्तियों का मंथन करते हो, बुद्धि के अंदर चलता है। शिव बाबा कौन पूछा, बुद्धि कहेंगे हाँ उस दिन बताया था, शिव बाबा पवित्रता का सागर, वो कहता है मेरे जैसे पवित्र बनो, तो सोचो बाबा आपके जैसे पवित्र कैसे बनो, किसमें पवित्र बनो, मुझे क्या करना चाहिए, अब बात करो उससे, तो बुद्धि चलती है, उसको कहते हैं मंथन, उसको कहते वृत्ति, वृत्ति से वातावरण बनता है, पावरफुल वाइब्रेशंस बनते हैं। मन में किया तो पावरफुल वाइब्रेशन नहीं बनते हैं, तब का वृत्ति से वातावरण बनता है। तो मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है, यहां राजयोग की ये विधि है। योग में जब बैठते हो एक ही मन नहीं, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु, अरे आज उसको फोन करना था, आज ये काम करना था, माया रावण व्यर्थ क्यों आ रहा है, ये शिव बाबा ने बताया हुआ राजयोग नहीं है। शिव बाबा ने बताया मन बुद्धि मेरे से जोड़ो। तो इधर योग करने की विधि, जब अमृत वेले और शाम को योग में बैठते हो तपस्या का, अपने आप से पूछो मैं कौन, बुद्धि जवाब देगी, वो सत्य बोलती है, तो मन और बुद्धि एक हो गई, एकाग्रता, तब माया रावण व्यर्थ कोई विचार नहीं आएंगे, मेरा रूप पूछो वो बताएगा, बुद्धि को यूज करो, नहीं तो बुद्धि शाम थोड़ा समय, उसके बाद नींद आएंगी, उसके बाद और कोई विचार आएंगे। नींद आने का कारण, अगर किसी से बात करते रहो तो नींद आएंगी, योग रात को नींद किया है, अभी क्यों नींद आ रही है, क्योंकि अब अपने आप से बात नहीं करते हो, ध्यान नहीं है। तो इसलिए अमृत वेले शाम को जब बैठते हो अपने आप से बात करो कि मैं कौन, पूछो तो बुद्धि जवाब देती है, शिव बाबा कौन, पवित्रता का सागर है। तो ये विधि, अगर इस प्रकार अगर आप योग करते हो, तपस्या करते हो, बहुत जन्मों के पाप को भस्म कर सकते, योग अग्नि है ये। जैसे आप देखो इधर बैठे हो, सूर्य बाहर आया है, आपको पसीना नहीं आता इधर, अगर दो मिनट बाहर जाके बैठो धूप में, कुछ नहीं करना, उधर बैठना है, सूर्य की किरणें पड़ती है, चाहो या नहीं चाहो पसीना निकल जाता है। ये सूर्य इस शरीर की गंदगी को निकालता है, वो भी सूर्य है, सर्वशक्तिवान है, वो किसका पसीना निकालता है, आत्मा का पसीना निकालता है, शरीर का नहीं, शरीर का ये निकालता है, वो आत्मा का, इसलिए कहा आत्मा समझ के बैठो और उसकी चिंतन करो, तो उसकी शक्ति, तब का योग अग्नि, बीज रूप स्थिति, ज्वालामुखी कुछ नहीं है, सहज है, आराम से बैठकर अपने आप से बात करो, शिव बाबा से बात करो, बस 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितना करना चाहते, एक एक शक्तियों के ऊपर मंथन करो, शिव बाबा कौन, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, एक एक शक्तियों के ऊपर मंथन करो, कौन सा ज्ञान है उसके पास, वो कैसे आनंदित रहता है, वो कौन सा ज्ञान सुनाता है, वो शांति कौन सी है, कौन सी शांति है उसके पास, कौन सी पवित्रता है उसके पास, क्योंकि आज भी बाबा ने कहा जब तक पवित्र नहीं बने तो मेरे पास नहीं आ सकते हो, पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में जाना है, तो पवित्र कैसे बनो बाबा से पूछो, वो पवित्रता का सागर है, वही निवारण देगा ना, वही रास्ता बताएगा। तो यहां बैठकर अगर उसका चिंतन करते, आपका जैसे मोबाइल में डाला नंबर, आपका आवाज चला जाता है, तो ये भी पहले 5 नंबर चाहिए, आत्मचिंतन चाहिए। दुनिया के अंदर आत्मचिंतन अलग, यहां अलग है। तो स्वयं भगवान आके पढ़ाता है मैं कौन, पूछना, तो बुद्धि, मन बुद्धि को यूज करना है। तो आप अनेक जन्मों का जो पाप को मिटाकर अपना जीवन को उज्जवल बना सकते हो। लेकिन अभी क्या हुआ कि YouTube पर ये मिल रहा है, वो उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा। YouTube पर कौन ज्ञान सुनाता है, किसका ज्ञान है, कौन सुनाने वाला, कौन? मार्केट में बहुत कुछ सामान मिलता है, कौन देने वाला है? परमानेंट दुकान वालों के पास जाओ, अगर कुल कल खराब हो गया उसको बता सकते हो। रास्ते पर जो रेगड़ी वाला होता है उससे लिया, वो बेचा चला गया, अगर चीज खराब हो गया कल किसको पूछेंगे? चलते फिरते किसी का नहीं। शिव बाबा की मुरली के अंदर क्या आता है, हमको भगवान की मुरली चाहिए और किसी का नहीं चाहिए। कि किसी का ज्ञान चाहिए बताओ, माताएं बताओ, शिव बाबा का ज्ञान चाहिए कि और कुछ का चाहिए? जो समझते नहीं, और किसी का बहुत अच्छा हो, चटपटा होता है, वो चाहिए, वो हाथ उठाओ। जैसे आप मार्केट में बाहर के चीज खा लो, चटपटा बहुत अच्छा लगता है, घर में माताजी बनाती है वो ठीक नहीं है। हाँ, कहाँ का खाना चाहिए, बाहर का चाहिए। भाई बताओ, बाहर का मार्केट वाला बहुत अच्छा होता है, थोड़ा पसीना भी उसके अंदर होता है, हाँ गर्मी में निकलता है, बहुत टेस्टी लगता है वो, है ना? तो शुद्ध अन्न, तब कहा घर में माताजी आपके युगल जो खाना बनाती, स्वच्छता से, सफाई से, तब कहा ये स्वच्छता, ये पवित्रता है। दुनिया में पैसा कमाना उनको, आपके शरीर को नहीं देखना है, टेस्टी कैसे बने। तो इसके लिए अन्न की शुद्धता, मन की शुद्धता, किसी को देखते ही पहले सुनाया ये शिव बाबा का बच्चा है। हाँ, बहुत गुस्सा करता है, बहुत खराब है। अगर बच्चा बहुत खराब है किसको बताएंगे? बच्चों को कुछ बता सकते हो? माँ बाप को बताएंगे, माताजी देखो आपका बच्चा कितना परेशान करता है ना? माँ बाप को बताएंगे ना, हमारा कोई धनी दोरी है कि नहीं है? अगर कोई दुख देता है, गुस्सा करता है, परेशान करता, करता है नहीं, ऐसा नहीं, तो शिव बाबा है हमारा, धनी है उनका, माँ बाप है, तो उनको बताओ शिव बाबा आप कहते हो ये आपका बच्चा है, आप दुनिया को शांति देने आए हो, आपके बच्चों को तो पहले शांत करो, इसको तो पहले समझाओ, उसको बताओ। तब बाबा ने कहा मुझे बताते हो तो मैं देख लूंगा, मेरी जिम्मेवारी है। अगर मुझे पूछ के कुछ भी करते हो तो मैं जिम्मेवार हूं, अगर कुछ गलत भी हो गया तो मैं सुलझाऊंगा, ठीक कर दूंगा उसको, कहा। तो हर कर्म में समस्या, विघ्न, सब कुछ है। अगर जीवन को दिव्य करना चाहते हो, नहीं, अगर एक शब्द भी बोला आपने, आज बाबा ने कहा शांति के लिए क्या करना चाहिए, शांति की शक्ति चाहिए तो क्या करना चाहिए, वो आग बुझाने के लिए क्या चाहिए, शांति की शक्ति कहां से लेके आएंगे? योग की शक्ति है। उस अग्नि को, क्रोध रूपी अग्नि को भी आप शांत कर सकते हो। अगर एक शब्द बोल दिया, एक बूंद तेल का डाल दिया, 5000 साल के लिए हिसाब किताब बन गया। भविष्य को बिगाड़ भी सकते हो, भविष्य को बना भी सकते हो, भविष्य को उज्जवल भी कर सकते हो। आपके हाथ में तकदीर है, भाग्य आपके हाथ में है, लेकिन किसके हाथ में बताओ, किसके हाथ में है? जो शिव बाबा की मुरली रोज सुनते हैं और बुद्धि में याद रखते हैं, औरों को दान करते हैं, वो बच्चे, सभी नहीं, बाकी सभी बच्चे तो बहुत है, वो बच्चे हैं जो ज्ञान सुनते हैं और याद रखते हैं और औरों को सवेरे से शाम तक दान करते हैं, तो उनके बुद्धि में ज्ञान की धारणा है। अगर ज्ञान बुद्धि में है तो आपकी दृष्टि, आपके बोल, आपके कर्म अपने आप परिवर्तन होंगे। तो बोलने वाला कौन, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, तब कहते हैं सोच समझ के बोलो, समझ बुद्धि। श्रेष्ठ कर्म कहा, श्रेष्ठ कर्म कौन करेगा, भ्रष्ट कर्म कौन करता है। बुद्धि के अंदर एक ज्ञान है, ये श्रेष्ठ ज्ञान है, तो कर्म श्रेष्ठ होगा। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, भ्रष्ट ज्ञान कर्म होगा। दोनों कर्म होते हैं, भ्रष्ट भी श्रेष्ठ भी। अगर भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हो, दिव्य बनाना चाहते हो, पुण्य आत्मा बनना चाहते हो, तो बुद्धि के अंदर ज्ञान चाहिए। मुरली सुनी हमने, लिख के रखी है, किसके लिए, पैसे हैं बैंक में है, मार्केट में जाओ सामान मिलेगा, पैसा दे दो सामान ले लो, पैसे साथ में चाहिए। इसे ज्ञान भी लिख के रखा है, डायरी में लिख के रखा है, किसके लिए है वो। सामने कोई आया तुरंत उसको ज्ञान का एक पॉइंट सुनाओ, देखो आज बाबा ने ये कहा, उसका चेहरा देखो खुश हो जाता है, आपको भी लगता है मैंने कुछ सेवा किया। गुलजार दादी बोलती थी शुरू में कि खुशी बांटो, हमने कहा दादी को खुशी कहां मिलती है, कैसे बांटू, कहां मिलती है, तो कहा अरे एक मुरली के पॉइंट सुनाओ और उसका चेहरा देख लो खुश हो जाता हो, और आपको भी लगता है मैंने कुछ सेवा किया है, ये खुशी है। खाना देंगे आप एक घंटे के बाद, शाम को फिर भूख लगेंगी, वो अल्पकाल की खुशी है, ये अविनाशी खुशी है। 10 साल के बाद भी याद आएगा उन्होंने मुझे ये कहा था। तो ऐसे अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करो अगर भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हो। नहीं तो इसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, क्यों कि वो चार प्रकार की बातें आती है मुरली के अंदर, बहुत लोग भी सुनाते हैं। एक उलझन क्यों हो रही है, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। एक कहता है ड्रामा फिक्स, हू बहु रिपीट होंगे, आप यहां बैठे थे यहां ही होंगे वापस 5000 साल के बाद भी जरूर, आप यहां बैठे आपका वीडियो निकल गया वो ऐसे रहेगा। अगर वो वीडियो वाला भाई आपका वीडियो का एडिट करता है, आपका चित्र निकाल देता है, हो सकता है ना, तो निकल चेंज हो गया। तो यहां भी संगम पर मुरली सुनते, योग करते, सब कुछ करते हुए अगर क्रोध भी किया आपने, 5000 साल के बाद हूं बहु रिपीट, परिवर्तन कुछ नहीं किया। तो ये उनके लिए ज्ञान सुनकर योग करते हुए सब कुछ करते हैं अपने अनुसार, विकर्म विनाश नहीं होते हैं, उनके लिए कहा हू बहु रिपीट। और एक है बाबा ने कहा आत्मा समझ, मुझे अगर याद करते हो योग अग्नि में भस्म करो, वो दोबारा नहीं होगा, वो कौन करेगा। जैसे रावण को मारा फिर से आता था, फिर कहा नहीं उसको जलाओ, तो कैसे जलाएंगे आप। अगर सवेरे किसी कारण से गुस्सा किया, कोई अर्जन हो गया, सॉरी किया, बाबा को लिखे भी दिया बाबा मैंने भूल किया, चला नहीं गया वो, है अंदर ही है। शाम को जब योग में बैठते हो आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, परम धाम में बाबा आप पवित्रता के सागर हो, आपने कहा मैं पतित को पावन बनने आ रहा हूं, बाबा आपने कहा मैं सब बच्चों को पावन बना के ले जा रहा हूं, बाबा आज एक काला दाग लगा आप बहुत बड़ा धोबी हो ये दाग मिटाओ, ये दोबारा नहीं करेंगे। आज बाबा ने कहा पश्चाताप करने के तरीका ये है, तो योग अग्नि से मिटाओ उसको, सवेरे भूल होती है, रात शाम को हुई, सवेरे योग में बैठते हो तब मिटाओ, आज ही मिटाओ। योग अग्नि से मिटाना, नहीं तो अंदर है, सॉरी कहा हो गया अंदर ही है, मिटाया नहीं। गुस्सा करते हैं कुछ गलत हो गया, सॉरी कहा ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया, बिंदी लगा दिया, लेकिन वो मिटा अंदर है, उसको योग अग्नि में भस्म करो सदा के लिए। तब का आत्मा समस्त बाबा को याद करते हो परम धाम में, वो अग्नि है, उस अग्नि में ये संस्कार डाल दो, भस्म हो जाएगा सदा के लिए वो, तब परिवर्तन होगा। सिर्फ ज्ञान सुनने से, मुरली सुनने से, सेवा करने से, तब ये उलझन होती है, हमारा पाप गया ही नहीं, क्रोध गया ही नहीं, 10 साल हो गया ज्ञान में चल रहे हो, रोज मुरली सुनते हैं, सुनने से क्रोध नहीं जाएगा। अगर क्रोध को मिटाना चाहते हो उसकी भी विधि है जो सुनाया, एक मुरली के पॉइंट याद रखो, 10-15 दिन करो, देखना क्रोध अपने आप छोड़ के जाएगा। एक मुरली के पॉइंट सवेरे, दिन में, रात को 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ, 3-4 लोगों को पढ़ के बताओ भले, लेकिन सवेरे से रात तक औरों को आज की मुरली के पॉइंट सुनाओ, 10-15 दिन करो, देखना क्रोध अपने आप आपको छोड़ के जाएगा। ये दवा है, ये मुरली संजीवनी बूटी है। हम बेहोश में क्रोध करते हैं, होश नहीं रहता है, जानबूझ के नहीं करते हैं, आता है तो बेहोशी से आता है। तो ये मुरली संजीवनी बूटी, अगर मुरली बुद्धि में है तो होश में रहते हो, जोश में रहते हो, जागृत रहते हो, तो वहां ये सामने परिस्थिति आती है क्रोध की, तो भी आप नियंत्रण करते हो, नहीं करना है, बाबा देख रहा है। शिव बाबा ने कहा था, मेरे बच्चे सद्गुरु के निंदक नहीं बनो, भगवान के बच्चे क्रोध कर रहे हो, नहीं करना है। आपको रोकेगा कौन? रोकेगा बुद्धि के अंदर ज्ञान है, तो मुरली सुनने से, पढ़ने से नहीं, बुद्धि के अंदर एक शब्द हो, कोई भी रोज एक शब्द बुद्धि के अंदर भरो, अगर है बाहर जाते ही औरों को बताते हो, आज बाबा ने ये कहा था, खाना खाने बैठे हो कोई मिला तो उनको भी सुनाते हो, आज बाबा ने ये कहा, तो सवेरे से रात तक बार बार अगर सुनाते हो, दिल में दिलाराम है। दिल में कौन है? हनुमान को सीता ने हार दिया रत्नों का, उसने देखा खोल करके, तोड़ दिया एक एक मोती को, कहते राम नहीं है, फेंक दिया। अरे ये क्या कर रहे हो, ये तो मेरे लिए पत्थर है जिसके अंदर राम नहीं है। अगर हमारी बुद्धि में अगर शिव बाबा के मुरली के पॉइंट नहीं है तो ये बुद्धि कैसी होंगी बताओ? दिव्य बुद्धि होंगी, कैसी होंगी? पत्थर बुद्धि कहेंगे। बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि को पारस बनाने आया हो, कभी उसके अंदर रोज एक एक मुरली के पॉइंट रखो, ये दिलाराम, राम तो उतरेगा, दिलाराम ने जो श्रीमत दिया उसको रखो, तब कहेंगे हमारे दिल में बुद्धि में दिलाराम है, बाबा ने आज ये कहा था, इसको कहते दिल में दिलाराम को रखो। रख सकते हो? राजस्थान वाले बताओ, राजाए बताओ, तब राजाए दान करते कहा, रानी भी दान करते हो, राजाए तो करते, रानी भी दान करेंगे, हाँ रानी का हुक्म चलता है और राजा का राज चलता है, राजा वो है, सवेरे से नाम राजा नहीं बनते, सवेरे से रात तक रोज एक मुरली के पॉइंट अगर आप किसी को सुनाते हो, राजा क्या देता है? हीरा मोती दान करता है, पत्थर नहीं और कुछ नहीं, हीरा मोती दान करते हैं। तो आप अगर राजा बनना चाहते हो, नाम राजस्थान में हो लेकिन राजा बनना पड़ेगा ना, दान करना पड़ेगा, तो रोज सवेरे से रात तक अपने आप से पूछो, ये एक मंत्र सीख के जाओ, सवेरे मुरली के पॉइंट सुनना है, याद रखना है, और सवेरे से रात तक 5-10 लोगों को सुनाना है, तब जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा, भविष्य उज्जवल हो जाएगा। सिर्फ मुरली सुनी, लिखी, डायरी कमरे में रख दिया, वो कल सवेरे खुलेंगी तो जीवन उज्जवल नहीं बनेगा, सुनने से पढ़ने से नहीं। दान करना सीखो, आपस में मिलो, बात करो जरूर, लेकिन इधर उधर की बातें नहीं करो। कभी कोई मिला, भाई जी ओम शांति, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताया था, कौन बोलेगा? वो भाई में से कोई बोलता है? अभी लास्ट शिविर का इतने दिन किसी ने किसी को मुरली के पॉइंट सुनाया? ओम प्रकाश भाई ने तो किसी को सुनाया नहीं है, अजमेर का राजा का, लेकिन अजमेर का राजा ने दान ही नहीं किया, किया किसी को नहीं किया, मुरली का पॉइंट सुनाया? किसको सुनाया? सुनाया था, आज सुनाया था, सुनाते हो रोज? हाँ, तो वो कहेंगे ज्ञान का दान करो, एक ही मंत्र लेके जाओ, ज्यादा नहीं, रोज और एक ही पॉइंट नहीं, बाबा को याद करो, नया नया पॉइंट, रोज नई नई पॉइंट, जैसे आज देखो नया पॉइंट बाबा ने कहा, भक्ति में भक्ति में बलि चढ़ते हैं। क्यों? उसे बाबा ने कहा देवताओं के पर बलि चढ़ने से कुछ नहीं होता है, कोई कुछ नहीं मिलता है। आप कहेंगे भाई जी कैसे नहीं? देखो एक भाई है कलकत्ता में, माताजी उनकी वाइफ रेगुलर मुरली सुनती है और वो भी सुनता था रेगुलर, लेकिन एक दिन उसको रात को खून की उल्टी हुई और डॉक्टर ने कहा ये रुक नहीं सकते, चला गया, खून खत्म हो गया। और उनके घर के बाजू में कलकत्ता में काली का मंदिर था, तो उसने कहा हे महाकाली आप मुझे बचाओ तो मैं आपका बन जाऊंगा, आपकी रोज पूजा करूंगा। खड़ा हो गया और आज तक भी उनकी युगल हर साल मधुबन आती, वो मंदिर में रोज जाएगा पूजा, महाकाली ने मुझे बचाया है, मुझे जीदान दिया है। तो देता है ना भक्ति में कि नहीं देता है? आज भक्ति में मंदिर में सब लोग क्यों जा रहे हैं? इतना सोना हीरा कैसे दे रहे? ये कहानी नहीं, अभी भी जीवित है, दोनों युगल कलकत्ता में जीवित है, काली मंदिर के बाजू में ही। आज बाबा ने याद किया बलि चढ़ाते देवी पर। हाँ एक जन्म क्या उसका क्रोध गया, विकर्म विनाश हुआ, पाप मिटेगा? हाँ, तो अल्प काल के लिए कोई ना कोई, मेरे बच्चों की शादी हुई, बच्चों को नौकरी मिली, कुछ ना कुछ प्राप्ति तो होती है अल्प काल के लिए, लेकिन क्रोध मिटा, बहुत जन्मों के पाप मिट गया? नहीं। तो भक्ति में अल्प काल की चीज मिलती है। यहां शिव बाबा आत्मा के अंदर जो पाप भरा है उसको सदा के लिए मिटा देता है। ये दोनों में अंतर जानना चाहिए, तब बाबा ने आज कहा इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। बाबा आपने क्या कहा आज मुरली में कि देवियों के ऊपर देवताओं के ऊपर बलि चढ़ाते हो तो कुछ नहीं, तो बाबा ने कहा उससे कोई फायदा नहीं। तो आप सोचो फायदा क्या है, नुकसान क्या है? तो किसके ऊपर बलि चढ़ना चाहिए? तो क्या है वो भक्ति, क्या है ज्ञान, क्या है? तो सोचेंगे, चिंतन, ऐसे नए पॉइंट मुरली से ले लो, आप भी सोचो, तब आपकी बुद्धि चलेंगी, नहीं तो बुद्धि नहीं चलती। सुना लिख के रखा हो गया, औरों के साथ डिस्कशन करो, आज बाबा ने ये क्या कहा, इसका अर्थ ये है, डिस्कशन करो, तब चेहरे पर चमक आती है, खुशी है, ये खुशी खुराक है। तो औरों को क्या सुनाएंगे आप? बाबा को याद करो, आत्मा समझो, इतना ही नहीं, रोज मुरली में कोई ना कोई नया पॉइंट्स आता है, तो उसको ढूंढ करके चिंतन मंथन करो, औरों से डिस्कशन करो, दोरों की भी राय ले लो, ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, तब आपकी बुद्धि चल। इसको कहते हैं ज्ञान के धारण करने के तरीका। तब का पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, सिर्फ मुरली सुनी नोट किया और वही पढ़ के सुना दिया, ये पोपट का काम है, पढ़ा और पढ़ाया। तो पढ़ने के इसलिए मम्मा की मुरली और बाबा की मुरली में अंतर है, देखना। बाबा फटाफट सुनाता है, समझ भी नहीं आता है, मम्मा क्या करती, एक एक मुरली पॉइंट को एक्सप्लेन करती थी, तब कहते मम्मा की मुरली समझ में आता है। पिताजी घर में कमा करके सब कुछ ला के रखता है, माताजी ऐसे नहीं खिलाती है, माताजी पका करके नरम करके और कुछ मसाला डाल के अच्छा बना के खिलाती है, तो माँ खिलाती है। तब आज बाबा ने कहे छोटी माँ की महिमा है, कौन सी छोटी माँ है और बड़ी माँ कौन है? हाँ मम्मा हर ज्ञान को स्पष्टीकरण करके समझाती थी। तो आप भी अभी मम्मा डे मनाएंगे, आप फिर मम्मा डे मनाने से कोई फायदा नहीं, मम्मा क्या करती थी वो मुझे करना है, तब कहेंगे आप भी भारत माता जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। कहते ये माता जी बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती है, ये भाई बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है, सिर्फ मुरली का पॉइंट सुनाया हो तो अब मैंने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, आप कुछ मसाला लगाओ, कुछ एक्सप्लेनेशन करो, तब कहेंगे बहुत अच्छा समझा रहे है ना। तब इसको कहा ज्ञान सुनाने का तरीका चाहिए, इसलिए मम्मा की मुरली सबको पसंद क्यों आती थी कि एक्सप्लेन करते थे। तो आप भी रोज एक मुरली अपना भाग्य बनाना चाहते हो, बाबा ने कहा कुछ करना नहीं, संसार में रहो, सब कुछ कर्म करते हो, संसार को संभालो, सब कुछ कर्म करते रहो, कुछ छोड़ना नहीं, कोई चीज छोड़ना नहीं, लेकिन एक काम करो सिर्फ, रोज एक बूंद ले लो और वो बूंद अपने आप को पढ़ाती हो, क्योंकि लोगों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन है अपने आप को पढ़ाना। रोज अपने आप को पढ़ाते रहो, आज बाबा ये कैसे करो, ये कैसे करो, खाना बनाओ, कपड़े धो लो, घर की सफाई करो, गाड़ी चलाओ, खेती में काम करो, बिजनेस करो, सब कुछ करते रहो, कुछ छोड़ना नहीं। अपने आप से बात करते, बाबा ये कैसे करो, ये कैसे करो, आपने कल ऐसे कहा था, परसों ऐसे कहा था, ये कैसे करो। फिर अगर कुछ उलझन है वो भी बता, कुछ उलझन है किसको पूछेंगे। आज बाबा ने कहा ये बाप टीचर सदगुरु एक ही है, तो बाबा के कमरे में बैठो, बाबा आप इनके तन में आते हो और आपने आज मुरली में ऐसे कहा, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करो। बाप हमारा टीचर है, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा को पूछना और चुप रहना, देखते रहो, आपको अपने आप टचेंगे, बच्चे इसका अर्थ ये है। अगर नहीं समझ में आया कल मुरली में आएगा, कल नहीं आएगा दो दिन के बाद आएगा, भगवान के घर में अंधेर नहीं है, थोड़ी देरी होती है, कल नहीं तो परसों, दो तीन दिन के अंदर आपको किसी न किसी द्वारा या मुरली के द्वारा सुनाएगा जवाब। लेकिन बाबा से पूछो, इधर उधर नहीं पूछो, बाप हमारा टीचर है और वो निराकार ब्रह्मा के तन में बाबा के कमरे इसलिए बनाया है, तो बाबा के कमरे में जाके बाबा से पूछना, हो सकता है ऐसा, तो उलझन नहीं होंगे। कोई भी मुरली के पॉइंट हो, कोई भी बात बाबा ने कहा, कोई भी बात हो मेरे से वेरीफाई करो, मैं हूं इधर, मैं कहीं गया नहीं, इधर ही ऊपर ही हूं, देखता हूं, सब कुछ देखता रहता हूं, तो मेरे से पूछो, वेरीफाई करो, बाबा इन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे कहा, ये कैसे करो। सवेरे शाम बाबा के कमरे में बैठो, बाबा से वेरीफाई करो, कर सकते हो कि तकलीफ है, हो सकता है ऐसा। आप पूछेंगे बाबा कहां सुनता है, जवाब ही नहीं देता है, हाँ बाबा जवाब ही नहीं देता है। बाबा ने कहा जवाब बाबा कैसे देगा, भाषा से नहीं देता है, शक्ति देता है, हल्का कर देता है, निवारण कर देता है, जवाब नहीं देता है, मुख से नहीं बोलता है लेकिन हल्का करता है, तुरंत शक्ति देता है, तुरंत प्रबंध करता है कुछ ना कुछ अगर जरूरी है तो। समझ में आया, तो इसके लिए तरीका जानना चाहिए कैसे बाबा से रूरियान करना है। तो उलझन बहुत सारे मुरलियों के अंदर उलझन होता है, ये क्यों, ये क्या, उसने ऐसे कहा, तब का सब उलझन को समाप्त करो। सहज विधि है, सवेरे और शाम आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो, बस। उसने कहा मैं पतित को पावन करता हूं, और ज्ञान चाहिए कि दोबारा मेरे से कोई भी पाप ना हो, गलत ना हो, बुद्धि के अंदर एक बूंद रखो, दो ही काम किया तो बस, कोई उलझन नहीं। लेकिन बहुत कुछ सुनते रहेंगे ना, तो क्या करो, क्या छोड़ो, तो उलझन होती है। समझ में आया, ओम शांति। अभी दो मिनट शांत होके बैठो, आंखें खोलकर, कोई सोए हुए तो जागृत रहो, किसी को नींद आई हो, और शुभ बाबा को धन्यवाद दे दो। शुभ बाबा को देगी ना, शुभ बाबा का ज्ञान है, ठीक है।
रामनाथ भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तकदीर हम बनेंगे। आने वाले कल की तकदीर हम बनेंगे। दर्द भरे सीनों के हर दुख आज हम मिटा देंगे। दुख दर्द भरे सीनों के हर दुख
आज हम मिटा देंगे।
तूफान के दुखों में फंसे हुए हर मानव को छुड़ा देंगे। तूफान के दुखों में फंसे हुए
हर मानव को छुड़ा देंगे।
बंधन रा